रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओ, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान मजीद की तिलावत एवं अनुवाद से करेंगे। आज आप कुरान मजीद के सूरह इसरा की 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री रफी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العلي العظيم
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है, और हर मनुष्य का कर्म पत्र हमने उसकी गर्दन में लटका दिया है और प्रलय के दिन उसे एक खुली हुई किताब की भांति प्रस्तुत करेंगे कि अब अपनी किताब को पढ़ लो, आज तुम्हारे हिसाब के लिए तुम ही काफी हो। जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, सभा में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार है, जून की 15, ज़ीक़ादा की 4 और खुर्दाद माह की 25 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। विश्व समाचारों से हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनैतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे रोहिंग्या त्रासदी, और इस सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बताते चलें कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। पता है parstoday.com/hi। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि प्रतिबंध और आर्थिक युद्ध को मानवता के विरुद्ध खामोश अपराध के रूप में पहचाना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के भीतर बनाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन का वितरण आज से आरंभ हो गया है। फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों ने कहा है कि ज़ायोनियों के फ्लैग मार्च को बैतुल मुकद्दस पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जय श्री राम न बोलने पर एक बुजुर्ग की पिटाई कर कहा कि यह समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रूहानी का कहना है कि प्रतिबंधों और आर्थिक युद्ध को मानवता के विरुद्ध एक खामोश अपराध के रूप में पहचाना जाना चाहिए। डॉक्टर हसन रूहानी ने मंगलवार को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कहा कि आर्थिक युद्ध थोपने और अभूतपूर्व व्यापक प्रतिबंध लगाने वालों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक दस्तावेज की जरूरत है, ताकि पूरी दुनिया ईरानी राज के विरुद्ध ट्रंप सरकार के मानवता विरोधी अपराधों से अवगत हो सके। उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन तथा देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर आर्थिक युद्ध के दुष्प्रभावों की ओर संकेत करते हुए कहा कि आम तौर पर लोग मानवता के विरुद्ध अपराधों को युद्ध और झड़पों के रूप में ही देखते हैं, जबकि प्रतिबंधों और आर्थिक युद्ध को भी मानवता के विरुद्ध खामोश अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अमानवीय कार्रवाई की भेंट चढ़ने वाले के रूप में ईरान प्रतिबंध लगाने वालों के अपराधों का एक दस्तावेज तैयार करके दुनिया वालों के सामने पेश करेगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अपराधों के दस्तावेज के साथ ही, जिन्होंने एक राष्ट्र और देश के विकास में बाधाएं उत्पन्न की और लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ ही उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, आर्थिक युद्ध से निपटने के लिए प्रतिरोध और प्रबंधन का दस्तावेज भी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।
ईरान की सरकार के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा है कि देश में चुनावी उत्साह बढ़ता जा रहा है। अली रबई ने मंगलवार को कहा कि चुनावी डिबेट के कारण विभिन्न मुद्दों पर प्रत्याशियों के कार्यक्रम अधिक स्पष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता से चुनाव में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि जो बात महत्वपूर्ण है वो ईरान का भविष्य और उसका स्थान है। रबई का कहना था कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम जनता को चुनाव में भाग लेने का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा अधिक संख्या में मतदान करने से जनता के अजय इरादों के मुकाबले में ईरानी विरोधी प्रक्रियाएं धराशायी हो जाएंगी।
ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है। वोटिंग के लिए ईरान सहित दुनिया के अनेक देशों में तैयारी जोरों पर है। इस समय एक ओर जहां ईरानी राष्ट्र पैगंबर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम और उनकी बहन हजरत फातिमा मासूमा के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव का रंग भी लोगों पर चढ़ता जा रहा है। 18 जून को होने वाले मतदान को लेकर आम लोगों में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लगातार अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं, वहीं जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों के साथ साथ आम जनता की भी धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। हर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जीतता हुआ देखना चाहता है।
ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के भीतर बनाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन का वितरण आज से आरंभ हो गया है। डॉक्टर सईद नमकी ने बताया कि मंगलवार से ईरानी कोरोना वैक्सीन कोवीरान बरकत को बांटने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद वैक्सीनेशन केंद्रों को ये वैक्सीन भेजी जा रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि शीघ्र ही ईरान विश्व के उन देशों की सूची में आ जाएगा जो बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर सईद नमकी ने कहा कि कुछ बाधाओं के कारण देश में वैक्सीन के आयात के काम में समस्याएं आईं। हालांकि सरकार के निरंतर प्रयासों से वैक्सीन के आयात का काम पुनः आरंभ किया गया। उन्होंने कहा कि ईरानी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई कोरोना की पहली वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की अनुमति दे दी गई है, जबकि दूसरी कोरोना वैक्सीन की अनुमति अगले सप्ताह दे दी जाएगी। याद रहे कि ईरानी विशेषज्ञों ने अमेरिका की ओर से लगाए गए गैर कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद देश के भीतर कई प्रकार की कोरोना वैक्सीन और उसकी दवाओं को बनाने में सफलता हासिल की है, जिसकी सराहना विश्व की वैज्ञानिक बिरादरी ने भी की है।
फिलिस्तीनियों की आज़ादी के जन मोर्चे के एक नेता ने कहा है कि नफ्ताली बेनेट के नए प्रधानमंत्री बनने और ज़ायोनी कॉलोनी वासियों को इसकी अनुमति क्षमा कीजिएगा। फिलिस्तीनियों की आज़ादी के जन मोर्चे के एक नेता ने बल देकर कहा है कि नफ्ताली बेनेट के नए मंत्रिमंडल और ज़ायोनी कॉलोनी वासियों को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी कि वे फ्लैग मार्च को लेकर बैतुल मुकद्दस की सड़कों पर पहुंचे और मस्जिदुल अक्सा के प्रांगण को अपवित्र करें। माहिर मजहर ने ज़ायोनियों के फ्लैग मार्च से मुकाबला करने की कॉल देते हुए कहा है कि ज़ायोनियों की रैली का मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट के फिलिस्तीनी युवाओं का आह्वान किया है कि वे ज़ायोनियों का मुकाबला करें। माहिर का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि ज़ायोनियों का डटकर मुकाबला किया जाए। इस फिलिस्तीनी नेता ने ज़ायोनी शासन के अपराधों के मुकाबले में फिलिस्तीनियों की एकता और एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि संदर्भ में गजा के सभी इलाकों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। ये ऐसी हालत में है कि इससे पहले भी फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुट पुराने बैतुल मुकद्दस नगर और मस्जिदुल अक्सा के सामने ज़ायोनियों द्वारा किसी भी प्रकार के फ्लैग मार्च के प्रति चेतावनी दे चुके हैं।
रविवार की शाम इसराइली संसद नेसेट द्वारा ज़ायोनी शासन के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के नाम पर मोहर लगाने के बाद से नेतन्याहू बहुत ज़्यादा आक्रोशित और खिसियाए हुए हैं। यही कारण है कि उन्होंने ज़ायोनी शासन के नए कैबिनेट को धमकी भी दे डाली है। इसराइल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार पिछले 12 साल से सत्ता पर काबिज रहने वाले बिन्यामिन नेतन्याहू अब भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे अब इसराइल के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने एक ताज़ा बयान में अवैध ज़ायोनी शासन की नई कैबिनेट को भ्रामक और खतरनाक बताया और साथ ही दावा किया कि वे बहुत जल्द नफ्ताली बेनेट को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। गौरतलब है कि नेतन्याहू ने लिक्वुड पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में सोमवार को शासन पार्टी और धार्मिक ज़ायोनी पार्टी सहित अपने गठबंधन की अन्य पार्टी के साथ एक विशेष बैठक की। उन्होंने बैठक में ही में दावा किया कि वे बहुत जल्द नफ्ताली बेनेट और उनकी कैबिनेट को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।
भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जय श्री राम न बोलने पर एक मुसलमान बुजुर्ग की पिटाई पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में ऑटो में बैठे हुए एक बुजुर्ग की जय श्री राम न बोलने पर पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके इसे शर्मनाक घटना बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा है कि ये समाज और धर्म दोनों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है।
सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों ने यमन के मारेब और अलजौफ प्रांतों में एक बार फिर आवासीय क्षेत्रों को अपनी पाशविक कार्रवाई का निशाना बनाया है। यमन के अलमसीरा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों ने मारिक प्रांत में सरवा नामक क्षेत्र पर 18 बार और मदकल को 2 बार अपनी पार्श्विक कार्रवाई का लक्ष्य बनाया। अलजौफ प्रांत में अलहाज को भी कई बार हमलों का निशाना बनाया गया। संभावित क्षति के बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। याद रहे कि मारिक प्रांत के शहर का स्ट्रेटेजिक महत्व है, जिसके आजादी के लिए यमन की राष्ट्रीय सरकार ने कुछ महीने से सैन्य अभियान आरंभ कर रखा है। मारिब यमन में सऊदी अरब के समर्थक आतंकवादियों का अंतिम गढ़ माना जाता है।
इराक के एक सुरक्षा सूत्र ने सूचना दी है कि राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर मौजूद अमरीकी सैन्य छावनी पर कुछ अज्ञात ड्रोन विमानों ने हमला कर दिया। विक्टोरिया नामक सैन्य छावनी अमरीकी सैनिकों के ठहरने का स्थान है, जिसे निशाना बनाया गया। सूत्र के अनुसार इस हमले में अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली, हालांकि भारी माली नुकसान की सूचना हवाई अड्डे के बाहर से आई है।
कोरोना महामारी के दौरान अमरीकी कंपनियों को कम से कम 11 ट्रिलियन 200 अरब डॉलर की क्षति हो चुकी है। यह अमरीकी कंपनियां अब बैंक लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि कोरोना फैलने से पहले अमरीकी कंपनियों ने इसे देश के बैंकों से कम ब्याज पर बड़े बड़े ऋण ले रखे थे। जब कोरोना फैला तो अमरीका में मंदी शुरू हो गई और कंपनियों ने बैंकों से फिर कर्ज लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पिछले साल अमरीका की गैर लाभकारी कंपनियों का कर्जा 1 ट्रिलियन 700 अरब डॉलर हो गया था, जो एक साल पहले की तुलना में 600 अरब डॉलर अधिक था। अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक अमरीकी कंपनियों का कुल कर्जा 11 ट्रिलियन 200 अरब डॉलर था। यह रकम अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आधी रकम है, जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद का 50% है, अर्थात ये इस समय 22 ट्रिलियन 680 अरब डॉलर है।
कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा हालिया हत्याकांड को घृणा से प्रेरित एक आतंकवादी हमला बताए जाने के बाद पाकिस्तानी मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने वाले पर अब आतंकवाद की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। कनाडा के ओंटारियो में एक मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने वाले 20 वर्षीय चालक पर आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया, जिसके बाद सोमवार 14 जून को अभियोजकों ने जानकारी दी कि आरोपी पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई हैं। 6 जून को अफजाल परिवार के 4 सदस्य, एक पुरुष और उनकी पत्नी, एक लड़की और उनकी माँ ओंटारियो में टहलने के लिए निकले थे। उसी दौरान 20 साल के इस नेशनलिस्ट व्यक्ति ने अपने ट्रक से उन्हें कुचल डाला। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार करें। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं भारत में ईरानी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी, पश्चिम बंगाल में भाजपा में फूट,
प्रतिपक्ष के नेता स्वेंदु अधिकारी,
लेबनान में राजनीतिक संकट और एशिया के कुछ देशों में कोरोना का कहर। तो पहले ईरान के राष्ट्रपति चुनाव का विषय। جیسے پوری دنیا کے دوتاواسوں اور واڑج کیندروں میں 13ویں راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ویسے بھارت میں بھی ایران کے 13ویں راشٹرپتی پد کے چناؤ کے متدان کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ بھارت میں نئی دلی، ممبئی، بنگلورو، حیدرآباد اور پونے جیسے 5 شہروں میں متدان کیندر بنائے گئے ہیں۔ نئی دلی سے IRIB کے لیے حسن عبد الملکی کی رپورٹ، ساتھی روش زیدی کی زبانی۔
بھارت میں رہنے والے ایرانی ناگرک اپنے دیش کے 13ویں راشٹرپتی چناؤ میں بھاگ لینے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ نئی دلی میں ایران کے دوتاواس اور بھارت کے انیک شہروں میں بنے واڑیجیہ دوتاواس دیش کے 13ویں راشٹرپتی چناؤ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ان شہروں میں جہاں زیادہ ایرانی ناگرک رہتے ہیں، سرکشا کے کڑے پربند کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں تعینات ایرانی راجدوت کے انوسار راشٹرپتی چناؤ کے لیے 5 متدان کیندر بنائے گئے ہیں۔ اگلے شکروار کو بھارت میں رہنے والے ایرانی ناگرکوں کا متدان ہوگا۔ متدان میں سویدھا کے لیے نئی دلی، ممبئی، بنگلورو، حیدرآباد اور پونے جیسے 5 شہروں میں متدان کیندر بنائے گئے ہیں، اور بھارت میں رہنے والے ایرانی متداتا ان کیندروں پر جا کر اپنے اپنے متادھیکاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حسن عبد المالکی، IRIB نیوز، دلی۔
پشچم بنگال ودھان سبھا چناؤ میں ترمول کانگریس کی زبردست جیت کے بعد پارٹی چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہوئے نیتا واپس لوٹنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ بھاجپا کے زمینی استر کے کاریکرتا پارٹی کا سمرتھن کرنے پر پچھتاوا جتاتے ہوئے جنتا کے بیچ پہنچ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ وسترت رپورٹ کے ساتھ نئی دلی سے ہمارے سمواددتا شمشاد کاظمی۔
بھارتیہ جنتا پارٹی پشچم بنگال ترمول کانگریس چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہوئے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی گھر واپسی روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن اس کی یہ کوشش وفل ہوتی دکھ رہی ہے۔ بنگال ودھان سبھا میں نیتا پرتیپکش شبھیندو ادھیکاری نے سوموار شام کو راج بھون میں پارٹی ودھائکوں کے ایک پرتینیدھی منڈل کے ساتھ راجیہپال جگدیپ دھنکھڑ سے بھیٹ کی تھی۔ اس دوران بھاجپا کے لگ بھگ 24 ودھائکوں نے اس میٹنگ سے دوری بنا لی، جس سے بھاجپا میں ٹوٹ کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں۔
پرتیپکش کے نیتا سویندو ادھیکاری سہیت پرتیپکش کے 50 ودھائکوں نے میرے کو ایک گیاپن دیا ہے۔ اس گیاپن میں انہوں نے پشچم بنگال کی بھیاو استھتی کا ورنن کیا ہے اور پرمکھ روپ سے 4 باتوں کی اور دھیان آکرشت کیا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ بھاجپا نیتاؤں کی اس بیٹھک کا ادیشیہ راجیہپال کو پشچم بنگال میں ہو رہی کئی ہنسک اور اپریہ گھٹناؤں کی جانکاری دینا اور انیہ مہتوپورن معاملوں پر چرچا کرنا تھا۔ راجیہپال جگدیپ دھنکھڑ نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رکت رنجت ہنسا اس راجیہ کی ایک بڑی سمسیا ہے، جسے مل کر سماپت کیا جانا چاہیے۔ بھاجپا کے 24 ودھائکوں کی انوپستھتی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ایک تو سبھی بھاجپا ودھائک شبھیندو ادھیکاری کو نیتا کے طور پر سویکار نہیں کرتے، اور دوسرے ایسی رپورٹیں بھی ہیں کہ بھاجپا کے کئی ودھائک واپس ترمول کانگریس جانا چاہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھاجپا کے کئی ودھائک ترمول کانگریس کے سمپرک میں ہیں۔ TMC سوتروں کے انوسار 30 سے ادھک ودھائک ان کے سمپرک میں ہیں۔ پشچم بنگال کی مکھیہ منتری اور ترمول کانگریس پرمکھ ممتا بینرجی نے کہا تھا کہ پارٹی ان لوگوں کے معاملے میں وچار کرے گی جنہوں نے مکل رائے کے ساتھ ترمول کانگریس چھوڑی تھی اور اب واپس آنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سپتاہ مکل رائے ترمول کانگریس میں واپس آ گئے تھے، جنہوں نے ترمول کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کا دامن تھاما تھا۔ بھاجپا میں شامل ہوئے ترمول کانگریس نیتاؤں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پشچم بنگال میں اب بھاجپا کی سرکار بنے گی، کیونکہ بھاجپا نے یہاں ستہ پریورتن کے لیے اپنی پوری شکتی جھونک دی تھی، لیکن چناؤں کا پرنام TMC کے پکش میں رہا۔ بنگال کی 294 ودھان سبھا سیٹوں میں سے 213 سیٹیں TMC کو ملی اور اس نے ایک بار پھر سرکار گٹھت کی۔ بھاجپا کو 77 سیٹیں ملی۔ چناؤ کے کچھ پہلے TMC کے 50 سے ادھک نیتاؤں نے بھاجپا کا دامن تھام لیا تھا، جن میں 33 ودھائک تھے۔ ان میں ایسے ودھائک بھی تھے جنہیں TMC کا ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ ترمول کانگریس نیتاؤں کی بڑی سنکھیا میں گھر واپسی کی اٹکلوں کے بیچ ممتا بینرجی نے کہا ہے کہ جنہوں نے پارٹی سے غداری کی ہے انہیں واپس نہیں لیا جائے گا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اور اب رخ کرتے ہیں بیروت کا۔
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी ने तुरुप का पत्ता खेलते हुए मंत्रिमंडल के गठन के फैसले से पीछे हटने का इशारा दिया है। साद हरीरी के इस फैसले से इस देश का राजनीतिक संकट एक बार फिर गहरा गया है। बैरू से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट, साथी सैयद मीसम की जबानी।
साद हरीरी द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से पीछे हटने की खबरों ने इस देश के राजनीतिक संकट को गहरा दिया है। एक टीकाकार का कहना है कि वर्तमान स्थिति में सभी हरीरी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ का कहना था कि ये अफवाह हरीरी ने जानबूझकर फैलाई है ताकि ईसाई पार्टी के नेता जिब्रान बासिल को मंत्रिमंडल के गठन के लिए अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सके, जबकि दूसरों का कहना है कि यह अमरीका और सऊदी अरब की ओर से दबाव का परिणाम है ताकि दूसरे व्यक्ति को मंत्रिमंडल के गठन की जिम्मेदारी सौंपी जाए। संसद सभापति नबी बेरी ने शीघ्र ही सरकार के गठन पर बल देते हुए देश की वर्तमान स्थिति को खराब आर्थिक स्थिति का नतीजा करार दिया है और कहा है कि ये स्थिति देश के लिए खतरनाक हो सकती है। संसद में हमारे अधिकतर साथी इस बात पर बल दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सरकार का गठन हो, देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। साद हरीरी को मंत्रिमंडल के गठन की जिम्मेदारी दिए हुए लगभग 8 महीने का समय हो रहा है, लेकिन जिब्रान बासिल से उनके मतभेद मंत्रिमंडल के गठन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मंत्रिमंडल के गठन की जिम्मेदारी से पीछे हटने की खबरों और राजनीतिक पार्टियों के बीच तनाव बढ़ने की वजह से इस देश की करेंसी की वैल्यू में पिछले एक सप्ताह के दौरान 10% की गिरावट आई है। हसन अजीमजादे, IRIB न्यूज, बेरूत।
कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि कोरोना वैक्सीन की इन देशों में भारी कमी है, इसीलिए इस क्षेत्र के देशों में संक्रमण और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कुआलालंपुर से IRIB के लिए इस्माइल हाजीपुर की रिपोर्ट, साथी मोहम्मद अली कुम्मी की जबानी।
दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह कोरोना वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से मौत और संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के मामले में इंडोनेशिया सबसे पहले स्थान पर है क्योंकि इस देश में संक्रमण के मामले 20 लाख तक पहुँच गए हैं, जबकि फिलीपींस और मलेशिया क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने इन देशों में कोरोना के बढ़ते केसेस के प्रति खबरदार किया है। एक टीकाकार का कहना है कि लोगों को इन नए वेरिएंट से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, उनको मेडिकल प्रोटोकॉल और मास्क इत्यादि का खास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह थाईलैंड में भी कोरोना के केसेस में वृद्धि होती जा रही है और इस देश में पिछले 45 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले 3 गुना जबकि इससे मरने वालों की तादाद लगभग 6 गुना ज्यादा हो गई है। कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से इस देश को वैक्सीन के कार्यक्रम में रुकावट का सामना है, जिसकी वजह से अधिकारियों को बहुत ज्यादा चिंता है। खेद की बात है कि कोरोना की वैक्सीन उससे कहीं कम बनी जिसका अनुमान लगाया जा रहा था और थाईलैंड के हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को रोकने पर मजबूर हुए हैं। फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों में भी कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना है। जैसा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के मामले में रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख का कहना है कि 10,000 लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन के उत्पादन की मांग कर रहे हैं ताकि इन देशों में कोरोना वायरस से फैलने वाली मानवीय त्रासदी को रोका जा सके। यूनिसेफ के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हर 3 मिनट पर एक आदमी कोरोना की वजह से मर रहा है। ये ऐसी हालत में है कि वैक्सीन की कमी की वजह से अब तक इन देशों की आबादी के केवल 6% हिस्से को ही वैक्सीन दी जा सकी है। कुआलालंपुर से IRIB के लिए इस्माइल पुर हाजी की रिपोर्ट।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا. ہماری آج کی اس سبھا کے انت میں آپ سنیں گے کارکرم قرآنی قصے, کنتو اس سے پہلے پرستت ہے کارکرم روہنگیا تراسدی.
روہنگیا تراستی.
دوستو, کارکرم روہنگیا تراستی کے ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور روی سیدی کا سلام سویکار کیجیے. آج کے کارکرم میں بھی ہم روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے اتیاچاروں کے بارے میں چرچا کریں گے.
دوستوں, سعودی عرب ان دیشوں میں شامل ہے جنہوں نے میانمار میں بڑے استر پر نویش کیا ہے, خاص طور پر راکھین پرانت میں جو واسطو میں روہنگیا مسلمانوں کا ایتہاسک ٹھکانہ ہے اور جن کے ادھکانش لوگوں کو ان کے گاؤں سے نکال دیا گیا ہے اور اب وہ بنگلہ دیش کے شرنارتھی شیوروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لیکن لگ بھگ 2.5 لاکھ روہنگیا سعودی عرب اور میانمار کے بیچ ہونے والی سانٹ گانٹھ کے تحت سعودی عرب پہنچا دیے گئے اور مکہ اور مدینہ نگروں کے آس پاس رہتے ہیں, جہاں سعودی عرب انہیں سستے مزدوروں کے روپ میں استعمال کرتا ہے. کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی نظر راکھین کی ہری بھری اپجاؤ زمین پر ہے اور وہاں سے روہنگیا مسلمانوں کو نکلوانے میں بھی اس کی بھومکا ہے.
میانمار سے روہنگیا کا معاملہ نشچت روپ سے ایک تراسدی ہے, لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے تو جلد ہی یقین نہیں آتا. لیکن میانمار کے راکھین سے روہنگیا کو نکالنے کے پیچھے سعودی عرب کے ہاتھ ہونے کی بات اس سمے ادھک کی جانے لگی جب ارکان روہنگیا سالویشن آرمی نامک ایک چرم پنتھی گٹ نے سوئم کو آتنکوادی سنگٹھن داعش سے سمبندھت بتایا اور سن 2017 میں ارکان میں ایک پولیس تھانے پر حملہ کر دیا. اس حملے میں کئی سینک مارے گئے. اس گھٹنا کے بعد بودھ چرم پنتھیوں نے روہنگیا مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں میانمار کی سینا کی مدد بھی پراپت تھی. ان لوگوں نے روہنگیا مسلمانوں کی بستیوں میں بڑے پیمانے پر جن سنگھار کیا اور تباہی پھیلائی, جس کے بعد دسیوں ہزار لوگ بھاگ کر پڑوسی دیش بنگلہ دیش پہنچ گئے. بہت سے سوتروں کا کہنا ہے کہ ارکان روہنگیا سلویشن آرمی کا سرگنہ عطا اللہ عمار جنونی, جو پاکستان کے کراچی نگر میں پیدا ہوا اور سعودی عرب میں پلا بڑا تھا, ریاض کی خفیہ ایجنسیوں سے اس کے نکٹ سمبندھ تھے. ورش 2017 میں عطا اللہ ابو عمار جنونی نے ایک ویڈیو جاری کر کے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے اتیاچاروں کے بارے میں چیتاونی دی تھی.
زیبا آرا برما ظالم گورمنٹ لے لڑائی گری نجر دفاع گجی ہی با کیوں بولی کھولے یہ کتا نائ پورا دنیا جانے تو سائر آجا ہتر پانچ بسر ہوگی دے یہ ظالم گورمنٹ ملٹری گورمنٹ جیتر ظلم اکل آسے این آر آر گجے اور گرت آسے.
سعودی عرب 2.5 لاکھ روہنگیاؤں کو اپنے دیش مزدوری کے لیے لے گیا, لیکن اصل مقصد ان کے کھیتوں پر قبضہ کرنا تھا. لیکن اسے قانونی اور دھارمک روپ سے صحیح درشانے کے لیے سعودی عرب نے ان کے کھیتوں کو خرید لیا, جس کا میانمار کی سرکار نے بھی سواگت کیا. میانمار کی سرکار دوارا روہنگیا مسلمانوں پر کیے جانے والے اتیاچاروں میں سعودی عرب کا سہیوگ ایسی دشا میں جاری ہے کہ میانمار میں سنیکت راشٹر سنگھ کی وشیش رپورٹر یانگلی نے بتایا کہ اس دیش کے مسلم باہولی شیتروں پر سینا کے حملے کے ماتر 2 ہفتوں کے دوران 1,12,000 سے ادھک روہنگیا سینا کی ہنسا کی وجہ سے دیش چھوڑ کر بھاگ گئے.
There's a lot of big words that have been said in light of this incident, a lot of very strong condemnation, but it doesn't seem like the military government is taking heed to any of this. I was disappointed that the international community could not come up with a stronger resolution from the Security Council. It was a presidential statement, but that, having said that, it was an improvement. We've come so far from it. We had never, I for the first person and the last person, would have never dreamt that Myanmar would choose to go down this path.
वो कहती हैं कि हम म्यांमार सरकार के रवैये से बहुत दुखी हैं. उन्होंने हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया.
I'm really deeply disappointed and very saddened by this decision of Myanmar to deny cooperation with my mandate or with any other human rights mechanisms, and most of all, to silence people who speak out about these kind of atrocities.
म्यांमार की सेना चूंकि धार्मिक विचारधारा रखती है, इसलिए वो इस देश के बौद्ध चरमपंथियों के साथ मिलकर रोहिंग्या जाति के लोगों पर ऐसे भयानक अत्याचार करती हैं कि जिससे इंसानियत भी शर्मा जाती है.
दुनिया भर के मीडिया में प्रसारित चित्रों से पता चलता है कि बौद्ध चरमपंथी रोहिंग्या मुसलमानों को जिंदा ही जला देते हैं या उनका सिर काट देते हैं और उनकी खाल उतार लेते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब में उपजाऊ जमीनों का अभाव है, लेकिन अनाज की जरूरत बढ़ रही है, इसलिए उसे रोहिंग्या जाति के लोगों की जमीनों की जरूरत है ताकि बड़े पैमाने पर अनाज उगाया जा सके. अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की एना क्लेमन का मानना है कि सऊदी अरब अरकाना या वही राखिन को अपने लिए अनाज का भरोसेमंद स्रोत बनाना चाहता है. यही वजह है कि रिपोर्टों से पता चलता है कि राखिन प्रांत में रोहिंग्या की जमीनों पर सऊदी अरब की फार्मिंग कंपनियों ने काम तेज कर दिया है. मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक ने भी रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाते हुए सऊदी अरब सहित दुनिया के सभी देशों की चुप्पी पर चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने मलेशिया में रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में आयोजित हुए एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि म्यांमार में रोहिंग्याओं का नरसंहार हो रहा है और दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है.
The world cannot sit by and watch genocide taking place. The world cannot just say, look, it's not our problem.
जब इस सच्चाई का पता चलता है तब समझ में आता है कि आखिर क्या वजह है कि म्यांमार में इतने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या और विस्थापन पर सऊदी अरब चुप है. यही नहीं बल्कि इस बारे में अपना रुख भी स्पष्ट नहीं करता. यही वजह है कि जब पूरी दुनिया के मीडिया में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा छाया था, सऊदी अरब के मीडिया में इस पर बहुत ही कम कवरेज देखने को मिली और आज भी सऊदी मीडिया में इस मुद्दे पर बहुत ही कम चर्चा होती है. यह ऐसी हालत में है कि जिस तरह के दावे सऊदी अरब करता है, उसके बाद इस्लामी जगत में यही उम्मीद थी कि सऊदी अरब रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में तो जबान खोलेगा ही, मगर वो चुप रहता है. इससे पहले कि ये रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरब और इसराइल म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, रोहिंग्या मामलों के मानवाधिकार कार्यकर्ता नेसे लोविन ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि सऊदी अरब के डिटेंशन कैंप में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मानव अधिकारों को लेकर सऊदी अरब के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है.
According to the Saudi laws, since they are registered as the different nationality, we can't do anything by legal help. But we have been appealing to the Saudi authorities since past 2 years, and I have approached the Saudi official diplomat, but no one is ready to help. So we are now in the process to approach the European government to appeal appeal the Saudi authority through the European government.
ویسے یہ بھی بتا دیں کہ میانمار میں سعودی عرب کا نویش روہنگیا مسلمانوں سے چھینی ہوئی زمینوں پر فارمنگ تک ہی سیمت نہیں ہے، بلکہ گت 10 ورشوں کے دوران سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی آرامکو نے راکھن پرانت میں تیل اور گیس کے کھیتر میں بھی بڑا نویش کیا ہے۔ یہ بھی جاننا روچک ہوگا کہ سعودی عرب کی آرامکو کمپنی کو میانمار میں امریکیوں نے رجسٹر کیا ہے۔ سعودی عرب نے سن 2001 کے بعد میانمار میں بڑا نویش کیا ہے۔ یہی نہیں، تیل و گیس کی دولت سے سمپن راکھن پرانت میں اس طرح سے سعودی عرب سکریہ ہے کہ اس نے چین کے ساتھ ایک پائپ لائن کی پریوجنا پر بھی ہستاکشر کیے ہیں۔ یہ پائپ لائن راکھن میں نکلنے والے تیل کو چین پہنچائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تیل پائپ لائن بہت ادھک شمتا رکھتی ہے اور چین کی ضرورت کا ایک بڑا حصہ راکھن پرانت سے پورا کیا جائے گا۔ چین میانمار کے جنرلوں کا سب سے بڑا سمرتھک ہے اور سعودی عرب راکھن پرانت میں سب سے ادھک نویش کرنے والا دیش ہے۔ اس طرح سے یہ تکڑی مل کر روہنگیا کا خون چوس رہی ہے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہے۔ دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ قرآن قصے۔
دوستو، کاریکرم قرآنی قصے کی ایک انی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں زہرا زیدی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کریں۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت سنکھیا 82, 83 اور 84 کی ویاکھیا پرستت کریں گے۔
دوستو، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی گھوشنا کے 5ویں سال مسلمانوں کا ایک گٹ افریقہ کے تتکالین دیش حبشہ کی اور پلائن کر گیا۔ یہ کام انہوں نے حضرت محمد کے آدیش پر مکے کے انیکیشور وادیوں کی یاتناؤں سے بچنے کے لیے کیا۔ حبشہ کے تتکالین راجہ کا نام نجاشی تھا، جو عیسائی تھا۔ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کا بھرپور سواگت کیا اور وہ انہیں مکے کے انیکیشور وادیوں کے پرتنیدھی کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ قرآن کے سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں میں اس کا الیکھ ہے، جس کو ہم وستار سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔
جس زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کا نمنترن دے رہے تھے اس سمے مسلمان الپ سنکھیا میں تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ قریش ان پر اتیاچار کیا کرتے تھے جس سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ یہی کارن تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھرم کا نمنترن دینے میں طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی تھیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کے منوبل کو اونچا رکھنے اور بے گھروں کو قریش کے اتیاچاروں سے بچانے کے ادیش سے انہیں حبشہ پلائن کرنے کا آدیش دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ حبشہ یا ورتمان ایتھوپیا کا شاسک نیک ہے، وہ کسی پر اتیاچار نہیں کرتا، تم لوگ فی الحال وہاں چلے جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ ایشور شاید ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے۔
پیغمبر اسلام کے اس آدیش کے ساتھ ہی کچھ مسلمان بہت خاموشی سے جدہ کے لیے نکلے تاکہ اس کی خبر مکہ کے انیکیشور وادیوں کو نہ لگنے پائے۔ اس سمے جدہ ایک بہت ہی مہتوپورن بندرگاہ تھی۔ جب یہ مسلمان جدہ پہنچے تو سنیوگ سے ایک ویاپارک جہاز حبشہ کے لیے نکل رہا تھا۔ جیسے ہی مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ جہاز حبشہ جا رہا ہے تو وہ فوراً کرایہ ادا کر کے اسی جہاز پر سوار ہو گئے۔ یہ خبر مکے کے انیکیشور وادیوں کو مل گئی۔ اس سوچنا کے ملنے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو مکے سے بھیجا کہ وہ جا کر ان مسلمانوں کو واپس لائیں۔ جس سمے یہ گٹ وہاں پر پہنچا اس سمے مسلمان وہاں سے حبشہ کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ گھٹنا پیغمبر اسلام کی پیغمبری کی گھوشنا سے 5 سال پہلے رجب کے مہینے میں گھٹی تھی۔
پلائن کی اس سفل گھٹنا کے بعد مکے کے ایک دوسرے گٹ نے حبشہ پلائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس گٹ کا نیتریتو جعفر بن ابی طالب کر رہے تھے۔ اس پرکار سے حبشہ میں پلائن کرتا مسلمانوں کی سنکھیا 83 ہو گئی۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ویسے ہی پایا جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ وہاں کے راجہ نے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا۔ مکے کے انیکیشور وادیوں کو جب یہ پتا چلا کہ حبشہ میں مسلمان آرام سے جیون بتا رہے ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو واپس بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو حبشہ بھیجا۔ مکے کے انیکیشور وادیوں نے حبشہ کے راجہ اور دربار کے لوگوں کو پربھاوت کرنے کے ادیش سے بہت سے اپہار بھیجے۔ انہوں نے اپنی بات کو حبشہ کے راجہ کو سمجھانے کے لیے 2 ایسے لوگوں کو بھیجا جو باتیں بنانے میں بہت ماہر تھے۔ یہ تھے عمر عاص اور عبید اللہ ابن ربیعہ۔ وہ جیسے ہی حبشہ پہنچے انہوں نے قریش کی طرف سے بھیجے گئے اپہاروں کو حبشہ کے راجہ کے حوالے کیا جسے اس نے سویکار کر لیا۔ اس کے بعد عمر عاص نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو کر ہمارے ہی دھرم کی آستھاؤں کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، اب وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حبشہ کا راجہ نجاشی بہت ہی سمجھدار تھا۔ اس نے پہلے جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ دیکھو مکے سے آنے والے یہ قریش کیا کہہ رہے ہیں۔ جعفر نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں۔ نجاشی نے عمرو عاص سے کہا کہ یہ کیا صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں۔ اس کے بعد جعفر نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کے قرضدار ہیں جو یہ یہاں پر آئے ہیں۔ اس کے جواب میں عمرو عاص نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ عمرو عاص کے جواب میں جعفر نے نجاشی سے کہا کہ آپ اب یہ بتائیے کہ جب ہم ان کے غلام نہیں ہیں اور ہم ان سے کوئی ادھار بھی نہیں لے چکے ہیں تو پھر یہ آپ سے ہم کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ واستوکتا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نگر میں ہمیں ٹارچر کرتے تھے، ان کی یاتناؤں سے تنگ آ کر ہم نے آپ کے دیش میں آ کر شرن لی۔ عمرو عاص نے کہا
कि हे राजा, ये लोग हमारे बड़ों को बुरा भला कहते थे और हमारे बीच मतभेद फैला रहे थे। ये हमारे सम्मानीय लोगों का अपमान करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इनको हमारे हवाले कर दें ताकि हम इन्हें वापस अपने देश ले जाएं और वहां पर फैले मतभेद समाप्त हो जाएं। अब जाफर ने नजाशी से कहा कि हे राजा, हमारे और उनके बीच मतभेद का कारण यह है कि ईश्वर ने हमारे बीच अपना दूत भेजा है। वे हमको एक ईश्वर की उपासना का निमंत्रण देते हैं। उन्होंने हमें अनेकेश्वरवाद की उपासना और मूर्ति पूजा से रोका है। उन्होंने हमें नमाज पढ़ने, जकात देने का आदेश दिया है और हमारे बीच के मतभेदों को समाप्त कराया है। उन्होंने मुर्दार का गोश्त और सुअर का गोश्त खाने से रोका है। उन्होंने हमें न्याय करने और दूसरों की सहायता करने का आह्वान किया है।
जाफर की बात पूरी होने पर नजाशी ने कहा कि ईश्वर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसी काम के लिए भेजा है। फिर उसने कहा कि तुम्हारी जो ईश्वरीय किताब है, क्या उसकी कुछ बातें तुमको याद हैं? नजाशी की बात सुनकर जाफर बिन अबी तालिब ने पवित्र कुरान के सूरह मरियम की वे आयतें पढ़कर सुनाई जो हज़रत ईसा से संबंधित हैं। ये आयतें हज़रत मरियम को हर प्रकार की बुराई से पाक बताती हैं। जाफर ने जो आयतें सुनाई उनको सुनकर नजाशी और उसके दरबार में बैठे बहुत से ईसाइयों की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर नजाशी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग सही कह रहे हैं और मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा।
ये सुनकर अमरास ने कहा कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, न कि ये लोग। इब्राहिम की संतान के बारे में कुरान के सूरह आले इमरान की 68वीं आयत में ईश्वर कहता है, निसंदेह हज़रत इब्राहिम के सबसे अधिक निकट वे लोग हैं जिन्होंने उनका अनुसरण किया और पैगंबर तथा ईमान वाले लोग, और ईश्वर ईमान लाने वालों का संरक्षक तथा मित्र है। हबशा का राजा नजाशी, जो हज़रत मरियम के बारे में कुरान की आयतें सुनकर बहुत प्रभावित हो चुका था, वो अमरो आस की बातों से नाराज़ हो गया। उसने गुस्से में कहा कि जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ उसने कुरैश द्वारा भेजे गए उपहार भी वापस कर दिए और कहा कि मुझको ये तुम्हारे उपहार स्वीकार्य नहीं है।
इस घटना को कई साल बीत गए। इसी बीच पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की ओर हिजरत कर चुके थे। इस्लाम बहुत से क्षेत्रों में फैल चुका था। खैबर को जीता जा चुका था। ठीक उसी दिन जिस दिन मुसलमान खैबर की जीत का जश्न मना रहे थे, मुसलमानों का गुट हबशा से वापस आया। पैगंबर इस्लाम ने जब जाफर और मुसलमानों के गुट को देखा तो कहा कि पता नहीं मैं किस चीज़ पर अधिक खुश हूँ, खैबर की जीत पर या फिर हबशा से मुसलमानों की वापसी पर। इसी बीच नजाशी ने ईसाई विद्वानों और धर्म गुरुओं के एक गुट को मदीने भेजा और उनसे कहा कि तुम लोग मुसलमानों के पैगंबर के जीवन, उनके व्यवहार, लोगों से उनकी बातचीत और अन्य बातों के बारे में जानकारियां एकत्रित करके मेरे पास लाओ। जब ये लोग वहां पहुंचे और उन्होंने मस्जिद में कुरान की आयतें सुनी तो उनको सुनकर वे सब के सब मुसलमान हो गए।
इसी बीच सूरह मायदा की 82 से 84 नंबर की आयतें उतरी। हे पैगंबर, आप देखेंगे कि ईमान वालों से शत्रुता के मामले में यहूदी और अनेक ईश्वरवादी सबसे आगे हैं और ईमान वालों से मित्रता की दृष्टि से उनसे सबसे निकट आपको वे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं। ये मित्रता इस कारण है कि उनमें बहुत से पादरी और वैरागी उपासक हैं जो सत्य के समक्ष घमंड नहीं करते, और वे ईसाई पादरी और उपासक जब भी पैगंबर इस्लाम पर उतरने वाली आयतों को सुनते हैं तो तुम देखते हो कि सत्य को पहचान लेने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वे कहते हैं कि हे हमारे पालनहार, हम ईमान ले आए और तू हमारा नाम सत्य की गवाही देने वालों में लिख ले। اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب پردان کیے اور ہر ایک کا مارگ درشن کیا، اور ان سے پہلے ہم نے نوح کا مارگ درشن کیا تھا، اور ابراہیم کے ونش میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کا بھی ہم نے مارگ درشن کیا، اور ہم اس پرکار بھلے کرم کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں کئی ایشوریہ دوتوں کے ناموں کا الیکھ کیا گیا ہے۔ تو متروں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ اگلے کاریکرم تک کے لیے ہمیں انمتی دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ، ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا پریاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں آپ اپنے وچاروں سے ہمیں اوگت کرواتے رہیے۔ اپنی پرتکریاؤں کو آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے partstoday.com/hi۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا یہاں پر سمپن ہوتی ہے۔ آپ سے انمتی چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔